दिन भर 9 अप्रैल मंगलवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में एक विधायक समेत कम से कम 5 लोगों की मौत।
आज शाम को दंतेवाड़ा जिला में एक आईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा विधायक श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 पीएसओ कुल 5 लोग उस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है।
चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किए ताबड़तोड़ हमले।
मध्य प्रदेश में सरकार बनी अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी मास्टरी देखिए, बड़े बड़े लोगों के बंगलों से कैसे करोड़ों का काला धन इधर से उधर हुआ।
इसराइल में आम चुनाव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को विपक्ष की कड़ी चुनौती, सब विस्तार से। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक के काफिले पर हुए नक्सली हमले में विधायक समेत कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने दंतेवाड़ा सुकमा सड़क पर नकुलनार नाम की जगह पर विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमला किया और एक गाड़ी को धमाके में उड़ा दिया। दंतेवाड़ा में मौजूद बीबीसी संवाददाता ने बताया है कि धमाके में बुलेट प्रूफ गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। दंतेवाड़ा में 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि उसे लीबिया से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक हाल के दिनों में राजधानी त्रिपोली के बाहरी इलाके में हुई हिंसा में 47 लोग मारे गए हैं। मारे गए अधिकतर लोग लड़ाके हैं, लेकिन 9 आम नागरिक भी मारे गए हैं, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता तारिक जासारेविच ने कहा,
Health facilities have reported in the last 3 days 47 deaths.
स्वास्थ्य संस्थाओं ने बीते 3 दिनों में 47 लोगों के मारे जाने और 181 के घायल होने की जानकारी दी है। मारे गए लोगों में 2 डॉक्टरों समेत कई नागरिक शामिल हैं। ये डॉक्टर त्रिपोली के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे थे। एक डॉक्टर की मौत फील्ड एम्बुलेंस में काम करने के दौरान हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारी आबादी वाले शहर में एक लंबा संघर्ष छिड़ने की चिंता है। देश के पूर्वी इलाके में सक्रिय कमांडर खलीफा हफ्तार के नेतृत्व में लड़ाकों ने त्रिपोली पर हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थक लड़ाके शहर की सुरक्षा कर रहे हैं। अमरीका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन की ओर से की गई संघर्ष विराम की अपीलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसराइल के लोग देश की नई सरकार चुनने के लिए आज मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार सत्ता हासिल करने के लिए मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी लिक्विड पार्टी को नए बने मध्यपंथी गठबंधन से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। पूर्व सेना प्रमुख बेनी गैट्स इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। यरूशलम में अपना मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पत्रकारों से कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कोई शक नहीं है कि ये एक पवित्र काम है। ये सच में लोकतंत्र की आत्मा है और हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन आपको समझदारी से चुनाव करना है। मैं ये नहीं कहता कि किसे चुनना है। मैं ये कह सकता हूं, लेकिन मैं यहां से ये नहीं कहना चाहता। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे बर्लिन में हैं, जहां वे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से मुलाकात कर रही हैं। टेरेसा ब्रेक्जिट को आगे बढ़ाने के लिए मर्केल का समर्थन प्राप्त करने के लिए यहां आई हैं। इसके बाद वो पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगी और उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक्जिट को जून अंत तक टालने से उन्हें समझौता मंजूर कराने में मदद मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आने वाले 11 अरब डॉलर के सामान पर कर लगाने की धमकी दी है। यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी एयरबस को यूरोपीय संघ के सब्सिडी देने के जवाब में उन्होंने ऐसा किया है। एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय संघ ने लंबे समय से अमरीका के साथ व्यापार में फायदा उठाया है और जल्द ही ये बंद हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि दोनों ही पक्ष नागरिक विमान निर्माताओं को अवैध वित्तीय सहायता मुहैया कराते रहे हैं। अल्जीरिया की संसद ने अपने उच्च सदन के अध्यक्ष अब्दुल कादिर बिन सलाह को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। बुतेफ्लिका ने भारी दबाव में बीते सप्ताह इस्तीफा दे दिया था। बिन सलाह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने तक देश के अंतरिम राष्ट्रपति रहेंगे। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में एक विधायक समेत कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के DIG पी सुंदर राज ने क्या जानकारी दी वो सुनिए।
आज शाम को दंतेवाड़ा जिला में कुआकोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामगिरी क्षेत्र में एक IED ब्लास्ट में दंतेवाड़ा विधायक श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 PSO, कुल 5 लोग उस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है। घटनास्थल में SP और अन्य बल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल को निरीक्षण करके जो शहीदों को या जिसका डेथ हुआ उनके शिनाख्ती करने की कार्रवाई कर रहा है। घटनास्थल के आसपास पूरा सर्चिंग जारी है, पूरा घटना की समीक्षा की जाएगा कैसा हुआ क्या हुआ। जो गाड़ी जिसमें माननीय विधायक जी बैठे थे उसी गाड़ी IED के चपेट में आया है। काफ़ी पावरफुल इम्पैक्टफुल IED लग रहा है, काफ़ी बड़ा एक घटना क्रिएट हो गई और फायरिंग होने का भी जानकारी भी मिला नहीं है।
DIG पी सुंदर राज इस समय दंतेवाड़ा से BBC संवाददाता सलमान रावी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सलमान, ये बताइए कि DIG ने जो बताया उसके अलावा क्या जानकारी मिल रही है इस समय?
देखिए, पी सुंदर राज साहब अभी रायपुर में हैं और वहां पर उन्होंने ये जानकारी दी है। यहां पर काफी खौफ का माहौल है और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। 11 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट है बस्तर की जिसपे मतदान होना है और इसको लेकर चुनाव का प्रचार भी सरकार ने तय कर दिया था कि 3 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, चूंकि यहाँ पे माओवादियों ने बहिष्कार का आह्वान किया था और आज ही दंतेवाड़ा के इलाके में बड़ी रैली निकाली थी माओवादियों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान करते हुए। सड़कें वीरान थी, जब मैं जगदलपुर से दंतेवाड़ा की तरफ आ रहा था उस वक्त ही लग रहा था कि कुछ ऐसा गड़बड़ कुछ होने वाला है और यहाँ पहुंचते खबर मिली कि इतना बड़ा ये घटना को इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया माओवादियों ने। अभी जैसे पता चल रहा है मैं अस्पताल के बाहर ही हूँ, जो डेड बॉडीज हैं उनको लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। विधायक की बॉडी को लेकर अब जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं लोग, अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। बाकी के जो लोग मारे गए उनके साथ उनके भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी, एक एक करके बॉडी आ रही है। लेकिन ये जो घटना घटी है जिसमें ये विस्फोटक लगाए गए, ये ऐसा इलाका था जो प्लेन का इलाका था, ये पहाड़ी और जंगल के बीच का इलाका नहीं था और सड़क का निर्माण हाल ही में हुआ था। सड़क के बीचों बीच ये ब्लास्ट हुआ है और इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि काफी बड़ा गड्ढा नीचे बना और गाड़ी के परखचे उड़ गए। 200 मीटर दूर जाकर इंजन और अलग अलग पार्ट्स जो हैं गाड़ी के वो जाकर गिरे और उसके फौरन बाद जैसा कि पुलिस के जो लोग खबर दे रहे हैं यहाँ पर दंतेवाड़ा में कि गोलीबारी हुई। इसका मतलब ये होता है कि एम्बुश लगा के बैठे थे माओवादी वहां पर ताकि जब भी घटना को अंजाम देंगे और उसके बाद वो गोली चलाएंगे। तो गोली की चलने की खबर है और पूरे इलाके में, चूंकि अब आज आखिरी दिन था प्रचार का और परसों मतदान होना है, एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है।
सलमान, मैं इसी सवाल पर आ रहा हूँ कि चुनाव से ठीक पहले विधायक पर नक्सली हमला, सुरक्षा तैयारियों में कितनी चूक और कितनी लापरवाही?
चूक, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो ये कहता है कि ऐसे इलाके जहां जिन्हें कह दिया गया है कि ये बहुत ज्यादा अति प्रभावित इलाके हैं नक्सल प्रभावित, वहां पर गाड़ियों के इस्तेमाल का बिल्कुल कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादातर पैदल इलाके को तय करना चाहिए क्योंकि पूरा इलाका बारूदी सुरंगों से पटा हुआ है। लगातार घटनाएं घटी हैं पिछले 3-4-5 दिनों में, भोपालपट्टनम में घटना घटी है, बालोद में घटना घटी है, राजनांदगांव के पास घटना घटी है, लगातार नक्सली घटनाओं को वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लेकिन यह है कि उस इलाके में बिना रोड ओपनिंग पार्टी के वहां पे सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं थी। ऐसे में एक विधायक जो विधानसभा का सदस्य है वो अगर उस इलाके में जाता है तो मिनिमम जो सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए थी। इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मौजूद हैं दंतेवाड़ा के अस्पताल के बाहर।
सलमान, अभी हालात तेजी से बदल रहे हैं, ऐसे हालात में क्या लगता है आपको कि 11 तारीख को जो वोटिंग होनी है दंतेवाड़ा में वो संभव हो पाएगी या कुछ और भी हालात बदल सकते हैं? अब
देखिए, शहरी इलाकों में तो वोटिंग होती रहती है और वो होगी, लेकिन जो सुदूर के इलाके हैं जहां पे मतदान कर्मियों को भेजने का सिलसिला कल से ही शुरू कर दिया गया है, आज भी कुछ लोगों को मैंने देखा कि जो बसों में बैठकर मतदान कर्मी या जीप में बैठ के जा रहे हैं उनके चेहरे देखने लायक थे क्योंकि वो डरे हुए सहमे हुए थे। जब इस तरह का डिप्लॉयमेंट होता है खास तौर से चुनाव के माहौल में, उस वक्त कुछ पता नहीं चलता कि कब किस जगह पे किस तरह की वारदात हो जाए और ये इत्तेफाक ही था कि ये वारदात जो हुई है वो उसमें विधायक की गाड़ी चपेट में आ गई विस्फोट के।
छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में एक विधायक समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। जानकारी दे रहे थे दंतेवाड़ा से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की चुनावी रैलियों में कहा कि बीजेपी के अलावा किसी और को वोट दिया तो इसका मतलब ऐसी सरकार होगी जो स्थायी नहीं होगी, जिसे कई लोग मिलकर रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो देश के साथ साथ कर्नाटक भी मजबूत होगा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को निशाना बनाया और कहा कि वो अपनी सरकार को सुरक्षित रखने में व्यस्त है तो वो कहां से देश को मजबूत रख सकते हैं। मोदी ने 18 अप्रैल को चुनाव होने वाले लोकसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित किया और कहा,
आप मुझे बताइए, ये सभी नौजवानों का वोट मिले तो मेरी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कांग्रेस कल्चर से मुक्त सरकार कैसे काम करती है ये आपने पिछले 5 सालों में देखा है। हम सभी चौकीदारों को एक साथ आगे बढ़ना है। मैं भी नगरा नगरा यल्लावो।
उन्होंने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कभी लिंगायत या कभी वो कलिगा समुदाय के नाम पर बांटने की कोशिश की थी। चित्रदुर्गा के रैली में प्रधानमंत्री का फोकस उन नौजवानों पर था जो पहली बार वोट डालने वाले हैं।
कर्नाटका की सरकार कौन चला रहा है ये किसी को अंदाजी नहीं है, क्योंकि दोनों हारे हुए दल सिर्फ सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए उन्होंने जोड़ी बनाई है। इसलिए वो दिन रात बस इसी में लगे हैं, जनता को क्या चाहिए ये इनको इसकी परवाह नहीं है।
प्रधानमंत्री ने खासकर मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बालाकोट के बाद कुमार स्वामी को फिक्र लगी थी कि उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। दिलचस्प बात यह रही कि प्रधानमंत्री फिर वही बात दोहराई कि कर्नाटका ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि वह करीब 2 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा,
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ.
ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕು ಪೂರಿ ಬಹುಮತ ಮಿಲಿ ಥಿ? ವೋ ವಿಷಯ ಹಿ ನಹೀ ಹೈ ಯಹಾಂ, ವೋ ಸಿರ್ಫ್ ಝೂಟ್ ಬೋಲ್ತೆ ಜಾತೆ ರಹತೆ ಹೈನ್. ಕ್ಯಾ ಹಮ್ನೆ ಕಿಸಾನೋ ಕಾ ಖರ್ಚ್ ಮಾಫ್ ನಹೀ ಕಿಯಾ ಹೈ? ಇಸ್ ದೇಶ್ ಮೇ ಸಿರ್ಫ್ ಮೋದಿ ಹಿ ಹರ್ ಚೀಜ್ ನಹೀ ಜಾನ್ತೆ ಹೈನ್. ಯೇ ಥೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಶಬ್ದ. ಜಬ್ ಪತ್ರಕಾರ ನೇ ಪೂಚಾ ಕಿ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೇ ಉನ್ಸೆ ಜವಾಬ್ ಮಾಂಗಾ ಹೈ, तो कुमार स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने ही पीठ थपथपा लें। बहरहाल इस तरह के भाषण और प्रतिक्रिया का असर अगले महीने 23 मई को ही पता चलेगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स के हालिया छापों के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
असली चोर कौन है? चौकीदार का भय किसको है? इतने नोटों के बंडल निकल रहे हैं, सोचिए। मध्य प्रदेश में सरकार बनी अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी मास्टरी देखिए, इनकी कलाकारी देखिए। बड़े बड़े लोगों के बंगलों से कैसे करोड़ों का काला धन इधर से उधर हुआ, इसके सबूत आज सामने खड़े हैं।
वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन छापों को राजनीति से प्रेरित बताया है। संवाददाताओं के सवाल पर कमलनाथ ने कहा,
राजनीति की दृष्टि से जो डालने का प्रयास किया जा रहा है, कोई सफल होने वाला नहीं है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समय भोपाल से हमारे सहयोगी सूर्य न्याजी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सूर्य, ये बताइए कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापों और बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति और खासतौर पर कमलनाथ और कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है?
देखिए, कमलनाथ के जो करीबी लोगों के घर पड़े छापे हैं इस वक्त प्रदेश में चर्चा का विषय है। इस मामले का असर निश्चित तौर पर कमलनाथ और कांग्रेस पर पड़ना है, क्योंकि इस वक्त भाजपा और उनके नेता आरोप लगा रहे हैं कि यह पैसा वह पैसा है जो कमलनाथ की सरकार बनने के बाद 2 महीने में तबादलों के जरिए कमाया गया और इसका उपयोग जो है लोकसभा में किया जाना था। कांग्रेस के एक नेता ने, जो नाम नहीं बताना चाहते, उनने बातचीत में कहा कि आज के समय में, उन्होंने ये माना कि आज के समय में चुनाव लड़ना बहुत महंगा सौदा हो गया है और कोई भी जब राजनीतिक रैली होती है या कुछ इस तरह के काम जो होते हैं चुनाव के वक्त में, तो कोई भी पैसा जो होता है वो चेक के जरिए नहीं दिया जाता है। तो उनका ये कहना है कि इसलिए जरूरी होता है कि कैश रहे, लेकिन जो आयकर विभाग के छापे की वजह से इस वक्त जो कांग्रेस की चुनावी तैयारी है उसको झटका लगा है और इसका उपयोग माना जा रहा था कि इसका उपयोग कहीं ना कहीं चुनाव में ही होना था। खासतौर पर निशाना भी इस छापे में उन्हें बनाया गया है जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ये हम कमलनाथ जैसा बता रहे हैं कि वो भले ही इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हों, लेकिन इस वक्त पार्टी को इस मुद्दे पर बचाव करना मुश्किल हो रहा है।
बहुत शुक्रिया, भोपाल से हमारे सहयोगी सूर्य न्याजी थे। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। आज प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर और बिजनौर में रोड शो किया। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनकी कल सहारनपुर में ही रैली होने वाली थी, जो मौसम खराब होने की वजह से नहीं हो पाई। रोड शो के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पूरे ब्यौरे के साथ समीर आत्मज मिश्र।
बिजनौर और सहारनपुर में प्रियंका गांधी के लंबे रोड शो में जगह जगह कुछ इस तरह का माहौल था। हालांकि प्रियंका गांधी कल यानी सोमवार को ही सहारनपुर में राहुल गांधी के साथ रैली में शामिल होने वाली थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण ये कार्यक्रम रद्द हो गया। बाद में रोड शो का कार्यक्रम तत्काल रूप से बनाया गया और फिर वहां उमड़ी भीड़ को देखते हुए सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद गदगद दिखे।
प्रियंका वेक्टर पूरे देश में चल रहा है, आप सहारनपुर की बात ना करिए, देखिए नौजवानों में कितना जोश है, किस तरीके से भीड़ जा रही है नौजवानों की। मायावती जी की बात पे तो मुसलमान यकीन ही नहीं करता है, वो 3 बार तो भाजपा से मिल चुकी हैं, आगे क्या करेंगे इसके बारे में भी अभी नहीं कहा जा सकता है, तो मायावती जी की किस बात के ऊपर यकीन करें, कोई यकीन नहीं है मायावती जी का।
दरअसल सहारनपुर की सीट पर पिछले चुनाव में इमरान मसूद बीजेपी के मौजूदा सांसद राघव लखनपाल से 60,000 वोट से हार गए थे। गठबंधन की ओर से यह सीट बीएसपी के खाते में गई है और पार्टी ने यहां से फजलुर रहमान को उतारा है। 2 दिन पहले सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल की भी यहां रैली हुई थी, लेकिन वहां मौजूद पत्रकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी के रोड शो का लोगों पर खासा असर दिखा। वरिष्ठ पत्रकार रियाज हाशमी कहते हैं,
महागठबंधन के लोग जो कल ये प्रचारित कर रहे थे कि रिश्ता सुखाने के कारण प्रियंका और राहुल गांधी सहारनपुर नहीं आ पाए, जबकि उसके पीछे कारण साफ ये था कि एटीसी ने उनको वाहन की परमिशन नहीं दी थी, मौसम बहुत ज्यादा खराब था, जितनी भीड़ नहीं उमड़ पाई थी, हालांकि भीड़ कल बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। महागठबंधन की जो रैली देवबंद में हुई उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस रोड शो में उमड़ी है। सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, प्रियंका गांधी के दौरे से राजनीतिक प्रभाव तो पड़ेगा, चुनाव का जो परिदृश्य है वो किसी हद तक इससे प्रभावित नजर आ रहा है।
वही बिजनौर में बीएसपी के कभी कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर से पहले बिजनौर में रोड शो किया। बिजनौर में रोड शो के दौरान कुछ जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई। प्रियंका गांधी ने इससे पहले गाजियाबाद में भी रोड शो किया था। इस सीट पर भी 11 अप्रैल को ही मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होना है, साल 2014 में उन सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन पिछले साल हुए उपचुनाव में कैराना की सीट राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने जीत ली थी। इस बार वो कैराना से ही गठबंधन की उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के विश्वनाथ चाराली शहर में कथित तौर पर गौमांस बेचने के आरोप में 48 साल के एक मुसलमान व्यक्ति पर भीड़ ने हमला कर दिया। ये घटना यूं तो रविवार शाम की है, लेकिन मामला सोमवार को सामने तब आया जब सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो नजर आया। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की पहचान शौकत अली के रूप में की है। इस घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि हमला करने वाले कई लोग अभी भी फरार हैं। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
असम में कथित तौर पर गोमांस बेचने के शक में शौकत अली की जिन लोगों ने पिटाई की, पुलिस अब तक उन सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस घटना के बाद से शौकत अली का परिवार काफी डरा हुआ है। दरअसल पिछले करीब 40 साल से शौकत अली अपना परिवार चलाने के लिए विश्वनाथ चाराली के साप्ताहिक बाजार में मौजूद अपनी होटल में खाना बेचते आ रहे थे। उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन बीते रविवार को 10-15 लोगों की एक ऐसी भीड़ आई जिसने शौकत अली को अस्पताल पहुंचा दिया। उन्हें पीठ और मुंह पर काफी चोटें आई है। अस्पताल में मौजूद शौकत अली के छोटे भाई अब्दुल रहमान ने बीबीसी से कहा,
वहाँ से फिर उठा के बाजार में ले आए, लाके उसको बैठा के पूरा मारपीट किया, उसके बाद उसको शोर को मौके खिला दिया। वो भी तो बहुत हालत खराब है, उसके सीटी स्कैन में वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या फायदा मिलेगा। पुलिस तो जहाँ यहाँ मारपीट किया तो पुलिस आया यहाँ, उन दोनों को ले गया और उनको दो लड़का को भी पकड़ के ले गया। भाई को सारा रात लॉकअप में रखा, थोड़ा इतना थोड़ा सा मेडिकल करके उसका सारा रात लॉकअप में रखा।
इस घटना को लेकर जो वीडियो सामने आया है उसमें शौकत अली बुरी तरह घायल हैं और घुटने के बल बैठे हुए हैं। भीड़ में मौजूद लोग उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि भीड़ में शामिल लोग पूछ रहे हैं कि गोमांस क्यों बेच रहे हो, लाइसेंस कहाँ है, क्या तुम बांग्लादेशी हो। हालांकि विश्वनाथ जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रोशन इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं।
जिस मुसलमान की पिटाई हुई है उसका नाम शौकत अली है, और जो हिंदू की जो पिटाई हुई है उसका नाम कमल थापा है। सेम मिसक्रिएंट्स ने दोनों की पिटाई की है। एक्चुअली जो एलिगेशन था उसके अकॉर्डिंग जो मुस्लिम शौकत अली है वो मतलब कुक्ड बीफ मीट माने बेचते थे अपने होटल में बना हुआ, तो उसको लेकर के कुछ लोगों ने उसके साथ मतलब मिसबिहेव किया। बाद में जो है एक वीडियो वायरल हुआ कि उसके साथ जो है कुछ लोग मिसबिहेव कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने केस रजिस्टर किया और एक कल्प्रिट को अभी तक हमने पकड़ा है।
दरअसल विश्वनाथ चाराली का ये इलाका तेजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां 11 अप्रैल को मतदान होने हैं। लिहाजा चुनाव से पहले इस तरह की घटना को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ के अध्यक्ष अजीजुर रहमान इस घटना पर कहते हैं,
बीजेपी जब से हमारा असम पे रूलिंग शुरू किया है उस टाइम से असम पे सारा मुसलमान लोगों के ऊपर उन लोगों ने पूरा जुलम कर रहा है। और ये जो संडे को विश्वनाथ में जो इंसिडेंट हुआ है, जो शौकत अली को जो उन लोगों ने जो प्रेशर किया है उनको सुअर का मांस खाने के लिए, ये तो असम का हिस्ट्री में पहली बार ऐसे इंसिडेंट हुआ है। असम गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने ये डिमांड दे दिया, इतना लोग इस इंसिडेंट में जुड़ा हुआ है, सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ना है, अरेस्ट करना है।
पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के लोगों से संयुक्त निगरानी करवा रही है, साथ ही सुरक्षा बलों के जवानों को भी अलर्ट किया गया है। लिहाजा इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस तरह की घटना कहीं सांप्रदायिक तनाव पैदा ना कर दे। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। इसराइल में आज आम चुनाव हुए हैं। पिछले कई वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिल रही है। दक्षिणपंथी लिक्विड पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नेतन्याहू पांचवें कार्यकाल के लिए इस चुनावी दौड़ में हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए संदीप राय से।
बिन्यामिन नेतन्याहू अगर जीतते हैं तो वो इसराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियोन के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पार कर जाएंगे। हालांकि बिन्यामिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और उन्हें इतने सालों में पहली बार पूर्व सैन्य प्रमुख बेनी गैंट्स से कड़ी चुनौती मिल रही है। मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट अलायंस के प्रमुख गैंट्स सुरक्षा और राजनीति को साफ सुथरा करने के बुनियादी मुद्दों पर नेतन्याहू को चुनौती दे रहे हैं। दो अन्य पूर्व सैन्य प्रमुखों और टीवी एंकर से राजनीतिज्ञ बने। येर लैपिट के साथ मिलकर उन्होंने ये पार्टी बनाई, जिसका शुरू से ओपिनियन पोल में नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी से अच्छा प्रदर्शन रहा। 59 साल के लेफ्टिनेंट जनरल गैंट्स राजनीति में नए हैं और उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का वादा किया है।
We all should respect democracy. We all should take responsibility. Go to vote. Choose whoever you believe in.
लेफ्टिनेंट जनरल गैंट्स कह रहे थे, हम सभी को लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वोट करिए, उसे चुनिए जिस पर आप भरोसा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करिए, एक नया सवेरा आ रहा है, हमें एक नया इतिहास लिखना है। ये थे लेफ्टिनेंट जनरल कैंट्स के शब्द। 120 सदस्यों वाली इसराइल की संसद में अभी तक कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और देश में हमेशा गठबंधन सरकारें बनती रही हैं। इसका कारण है देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पार्टी सिस्टम का होना। इसका मतलब है कि सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री नहीं भी बन सकता है, बल्कि जो 120 सीटों में से 61 सीटें हासिल करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। चुनाव पूर्व सर्वे बताते हैं कि दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदियों के बीच कड़ी लड़ाई है और दोनों के 30-30 सीटें जीतने की संभावना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पार्टी सिस्टम में नेतन्याहू का पलड़ा भारी रहता है, जो इस बार भी गठबंधन सरकार बना लेने की उम्मीद लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने चुनावों से पहले कई कट्टरपंथी विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन किए हैं। फरवरी में उन्होंने एक अति चरमपंथी दक्षिणपंथी पार्टी से भी हाथ मिलाया, जिसके बारे में लोग मानते हैं कि वो नस्लवादी है। 1990 के दशक में फलस्तीनियों से शांति समझौता करने वाली इसराइल की लेबर पार्टी पर हाल के सालों में मतदाताओं का भरोसा कम हुआ है। गजा में हाल के दिनों में इसराइली सुरक्षा बलों और फलस्तीनी लड़ाकों के बीच तनाव बढ़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के तुरंत बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से चले आ रहे विवाद को हल करने की अपनी योजना की घोषणा करेंगे। हालांकि इस चुनाव में शांति प्रक्रिया कोई प्रमुख मुद्दा नहीं है। नेतन्याहू अपनी चुनावी रैलियों में ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अगर नई सरकार बनी तो वो कब्जा किए गए वेस्ट बैंक के यहूदी बस्तियों को इसराइल में मिला लेने का वादा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये बस्ती गैर कानूनी है, जबकि इसराइल इस बात से इनकार करता है। जानकारों का मानना है कि अति राष्ट्रवादी जेहूद पार्टी के नेता मोशे फिगलिन गठबंधन की सूरत में किंग मेकर के रूप में उभर सकते हैं।
इसराइल में हुए आम चुनाव, जानकारी दे रहे थे संदीप राय। राजेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आईपीएल की खबरें
जी संदीप, अगर बात की जाए आईपीएल की, तो थोड़ी देर पहले चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ही घर यानी चेन्नई के स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और आज उनका सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। कमाल की बात है कि दोनों टीमों ने 5-5 मुकाबले खेले हैं, 4-4 मुकाबले जीते हैं, 1-1 में हार मिली है, लेकिन अंकों रन रेट के आधार पर कोलकाता नाइट राइडर्स इस समय पहले स्थान पर है और उसका पूरा श्रेय जाता है आंद्रे रसेल को, जिन्होंने बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अविश्वसनीय रूप से मैच जीता है। दूसरी तरफ अगर चेन्नई की बात की जाए तो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मजबूत कंधों के दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई है। हालांकि इस दौरान कुछ मैचों में उन्हें शेन वॉटसन, कुछ में फैफ डुप्लेसी और कुछ में अम्बाती रायडू का साथ मिला, लेकिन तारीफ करनी होगी इस बार जो उनकी स्पिन तिकड़ी है, रविंद्र जडेजा, हरभजन सिंह और इमरान ताहिर, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है। दूसरी तरफ भारतीय महिला फुटबॉल टीम AFC ओलंपिक 2020 क्वालिफायर के दूसरे राउंड के तीसरे मैच में आज मेजबान म्यांमार से 3-3 से ड्रॉ खेलने के बावजूद अगले दौर में जगह बनाने से चूक गई।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक के काफिले पर हुए नक्सली हमले में विधायक समेत कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि लीबिया में हाल के दिनों में राजधानी त्रिपोली के बाहरी इलाकों में हुई हिंसा में 47 लोग मारे गए हैं। इसराइल के लोगों ने आज देश की नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे बर्लिन में हैं, जहां वो जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से मुलाकात कर रही हैं। टेरेसा ब्रेग्जिट को आगे बढ़ाने के लिए मर्केल का समर्थन प्राप्त करने के लिए यहां आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आने वाले 11 अरब डॉलर के सामान पर कर लगाने की धमकी दी है। अल्जीरिया की संसद ने अपने उच्च सदन के अध्यक्ष अब्दुल कादिर बिन सलाह को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका की जगह नया राष्ट्रपति चुन लिया है। बीबीसी समाचार
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार हर दिन की तरह सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।